भक्ति के आज प्रथम दिवस में सर्वप्रथम तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत बहलाया, या यूं कहें हमें बहुत प्यार से बाबा ने आज हमारा महावाक्यों के द्वारा श्रृंगार किया, बहुत प्यार दिया। अभी हमारे बीच बाबा के प्यारे नूरे रतन जैसे ज्ञान सागर है, उस ज्ञान सागर का वर्णन नहीं, इसी प्रकार ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर, ऐसे हमारे अथक सेवाधारी सूर्य भाई आज हमारे बीच हैं। हम उनका एक हाथ की ताली के द्वारा अभिनंदन करते हैं। सूरज भाई को तो मैं समझती कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो, क्योंकि जब बाप दादा के सीजन में स्पेशली जिस दिन मुरली होती है, उससे पहले मुरली से पहले चाहे आप ऑनलाइन पे देखते हो, चाहे आप मधुबन में आते हो, तो हमेशा आप उनकी क्लास सुनते ही हैं। और आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम ब्राह्मण बच्चों के सामने रखा कि कर्म करते हुए किस तरह से मनन चिंतन के द्वारा अपनी योगानुयोग स्थिति अपनी बनाना, जो बाबा कहते कर्म योगी। योग तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम कर्म में जाते हैं तो योग भूल जाता है, क्या बाबा की याद भूल जाती है, खिसक जाती है, थोड़ी देर के बाद फिर याद आता है, या हमारा मनन चिंतन नहीं चलता। लेकिन जहां तक मैं आपको जानती हूँ, मैंने देखा कि किस तरह से पहले कर्मणा सेवा में ही, पहले कर्मणा सेवा से ही शुरुआत हुई, और उसी शुरुआत में उसी में ही रहते रहते इतना मनन चिंतन करके आज उन्होंने इस स्थिति को प्राप्त किया है कि आप अपने द्वारा अनेक आत्माओं को प्रेरित करते हैं और बाबा के सन्मुख यानी बाबा से मिलन मनाने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे हैं हमारे सूरज भाई। और दूसरी बात, मैंने पहले भी एक बार शेयर किया है ये बात, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सीखने जैसी बात है वो, कि जिस समय बाबा का मुरली चलना होता है और सभी हॉल में आते हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का ध्यान क्लास की तरफ है, किसी का नहीं है, लेकिन वो इतनी तन्मयता से और इतने फोकस होकर वो बाबा के महावाक्य सुनाते रहते हैं, और जिनको अनुभव करना है उनको अनुभव कराते रहते हैं। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी सीखने जैसी है कि कुछ भी हो, क्या भी हो, लेकिन हमारा फोकस जो है, मन और बुद्धि जो है वो केंद्रित रहे। तो ऐसे हमारे सूरज भाई आज हमारे सामने स्पष्ट करेंगे देही अभिमानी अशरीरी विदेही अवस्था और उसका अनुभव। आदरणीय सूरज भाई।
ओम शांति। अशरीरीपन एक अभ्यास है जिसमें हम अपने को देह से न्यारा महसूस करते हैं, जिसमें हमें ये फीलिंग होने लगे कि जैसा ये देह मेरे पास है, ऐसे अनेक शरीर मैंने लिए हैं और छोड़े हैं, कभी नर शरीर में, कभी नारी शरीर में, बिल्कुल अलग होने की अनुभूति, डिटैच। देह हमारा माध्यम है और हम इसके मालिक, हमने देह में प्रवेश किया है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे, अब दादी में आते हैं, कैसे बाबा की फीलिंग है, मैं इसमें आया हूँ, एक घंटे के लिए आया हूँ, जाना है, माध्यम है वो उनका। हमें भी ये क्लियर महसूसता होने लगे, ये देह मेरा माध्यम है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ, और ये अभ्यास हमें बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, स्पिरिचुअलिटी का शिखर। हमारे ज्ञान योग का सबसे ऊंचा श्रेष्ठ शिखर, उस पर हमें पहुंचना है तो हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है, हमें अपनी पवित्रता के बल का महत्व क्या है उसको समझना है, हमारी संसार में उपस्थिति कितनी इम्पोर्टेंट है उसको जानना है। मैं बाबा के कुछ महावाक्य पढ़ रहा था, उसमें कहा बाबा ने दो ढाई साल पहले, जब भक्त बाबा को बहुत याद करते हैं दुखी होकर, तो बाप अपने कुछ बच्चों को याद करते हैं। क्यों? के इन्हें सकास दो, क्योंकि बाबा की सकास को वो रिसीव नहीं करेंगे, उनका कनेक्शन नहीं है भगवान से। वो हम सबके भक्त हैं और वो जिसे भी याद करें, चाहे हनुमान को याद करें, बहुत वो याद सीधी शिव बाबा को पहुंचती है। वो किसी देवी के भक्त हो, उसकी याद सीधी शिव बाबा को पहुंचती है, तो उससे भक्तों का कनेक्शन नहीं है। तो बाबा अपने योगी बच्चों को याद करता है कि ये बहुत दुखी हैं, इनका कल्याण करो। सोच लो आपको याद करता होगा, अभी आपको खुद सोचना है। तो बहुत ही नशे की ये बात है, मैंने पढ़ी, मुझे फिर से याद आई। उन दिनों तो हमने इस पे खूब चर्चाएं की थी, यहां भी इस हॉल में भी। तो अपनी शक्तियों को पहचानना, ऐसा दीदी होना पहली चीज। ऐसा दीदी होने वालों को बहुत फायदा रहेगा कि क्या होगा अंत में, सेकंड में देह छोड़कर चल देंगे। और जिन्हें ऐसा दीदी होने का अच्छा अभ्यास नहीं है, वो देह में उलझ जाएंगे। आज मुझे एक फोन आया, एक का हमारा एक रिलेटिव है 90 इयर्स प्लस, देह नहीं छोड़ पा रहा है। पहले तो मुझे हंसी आई, क्यों छुड़वाते हो बेचारे को, फिर बताया कि तड़फ रहा है बीमारी से, बहुत परेशान हो रहा है, आत्मा जैसे निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं पा रही है। ये बहुतों के साथ हो रहा है, उनके पाप कर्म उनको इस जेल में, देह भी तो उनके लिए जेल बन जाती है। 90 इयर्स में बहुतों के शरीर बेकार हो जाते हैं, आत्मा उसमें रहना नहीं चाहती लेकिन वो रहने के लिए विवश है, क्योंकि देह से अटैचमेंट है, संबंधियों से अटैचमेंट है। बिल्कुल डिटैच हो जाए इस देह से तो मोह भी स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। मोह को नष्ट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आत्मिक दृष्टि और आत्मा हो जाना, ऑटोमेटिकली मनुष्य का मोह व्यक्तियों और वस्तुओं से ढीला पड़ने लगता है। और याद रखेंगे, बहुत बड़े बड़े रहस्य इसमें छुपे हैं। जो आत्माएं जितना ज्यादा देह से न्यारे, वो उतना ही विश्व के प्यारे, सबके प्यारे। आप अपने परिवारों में रहते हुए देह से न्यारे होंगे, सब लोग बहुत प्यार करेंगे। जो शिकायत है, बहुत माताओं की भी शिकायत है, हमारे बच्चे सुनते ही नहीं, न सम्मान देते न प्यार रखते। एक माता की कहानी सुनाऊं, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कितना, 1 साल का, माँ उसे प्यार करती है ना, यहां मारता है, नाखून दोंच डालता है। मेरे से पूछा, फोन किया उसने, मैं क्या करूं, बच्चा है, मुझे प्यार करना इसको, पर वो मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा है जैसे। एक ने तो बड़ी हंसी की बात सुनाई, उसके घर में गले में लॉकेट है ये सोने का, बच्चा पकड़ता है और खींचता है, छोड़ता नहीं। उसका बाप कहता है, ये पिछले जन्म में चोर रहा है। हंस रहे थे, मुझे फोन कर रहे कि जरूर चोर था पिछले जन्म में, इन्हें चेन खींची है, माताओं की बहुत आदत, इसकी जाती नहीं। अगर हम देह से न्यारे रहेंगे, सबके प्यारे होंगे। इस माता को तो मैंने सिखाया, अभी तुम्हारा इससे कड़ा हिसाब है, कष्ट दिया है तुमने इसको, वो हिसाब लेने आया है। तो बचपन से ही तुम्हें तंग करना शुरू कर दिया उसने, और बड़ा होके वो हर तरह से तुम्हें कष्ट देगा, इसलिए अभी से इसे अच्छे वाइब्रेशंस दो, इससे क्षमा याचना करो, ये शांत हो जाए। गलती आपने की है, इसे सताया है बहुत। मैं तो देखता हूँ कि जब मनुष्य पाप करता है तो बड़ा खुश होता है, दूसरे को सता के बड़ी शांति मिलती है, और जब रिटर्न करना पड़ता है तो सारी शांति चली जाती है। इसलिए अशरीरी होने का अभ्यास, ये प्रैक्टिस है। मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, मैंने इस तन में प्रवेश किया है, चलो 2 मिनट अभ्यास करेंगे लाल लाइट। बिल्कुल आत्मा के स्वरूप को देखना, जैसे मैं आत्मा परम धाम से उतर आकर यहाँ बैठ गई, मैं इस देह में अवतार हूँ, मैं बहुत तेजस्वी हूँ, मुझसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, मैं बहुत प्रकाशमान हूँ, इस देह की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, कुछ क्षणों के लिए फील करें जैसा जैसे कि मेरा देह है ही नहीं, देह प्रकृति में लीन हो गया और बच गई मैं निराकार चमकती हुई ज्योति, केवल मैं। ओम शांति। ये प्रैक्टिस करनी है, ये कर्म में भी की जा सकती है, मैं आत्मा हूं इतना ही, ये देह मेरा वस्त्र है, भिन्न भिन्न बातें बाबा इसमें सुनाते हैं, मैं आत्मा करनहार हूं, करावनहार हूं, करा भी रही हूं कर भी रही हूं। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप करेंगे, बहुत सुंदर बात है वो, और गुह्य है। हमारे पास मन को कंट्रोल करने की शक्ति है, हम उसके मालिक हैं, अपने मालिकपन को स्वीकार करें। मन जानते हैं सब कितना भागता है, और जिसने मन को रोक लिया वो हवा को भी रोक सकता है, जिसने मन को रोक लिया वो प्रकृति का मालिक बन जाता है, वो विश्व की घटनाओं को रोक सकता है। मन को रोकना सबसे बड़ी साधना है, और इसमें बहुत बड़ा काम करेगी ये फीलिंग, मैं इस मन की मालिक हूँ, ये मेरे अधीन है और ये बाध्य है मेरी हर बात को मानने के लिए। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करते रहें, मन को आदेश देते रहें, दिन में 5 बार कर लें कुछ दिन, हे मन यहाँ नहीं जाओ, मैं तुम्हारी मालिक, तुम्हें आदेश देती हूँ, यहाँ नहीं वापिस आ जाओ, ये नहीं सोचो अब ये सोचो। ये प्रैक्टिस बहुत आनंद देगी आत्मा को। ये तो है प्रैक्टिस हमारी, और इसमें सबसे गुह्य बात आज तक बाबा ने ये सुनाई है, जो आत्माएं 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगी वे होंगी अस्वतन। 2 सेकंड में अशरीरी, वही बाबा के साथ जा सकेंगी, बाकी सो जाएंगी, वो भी बहुत अच्छे अशरीरीपन वाले होंगे 108, बाकी थोड़ा थोड़ा देर लगाएंगे, तो इस प्रैक्टिस को हमें बहुत बढ़ाना है। देही अभिमानी, आत्माभिमानी, देवता भी आत्माभिमानी हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान उन्हें नहीं है। तो क्या है, क्यों है वो आत्माभिमानी है? क्या बोलो, किसको आता है इसका उत्तर? सभी देवता आत्माभिमानी हैं। बोलो और, स्वेच्छा शरीर छोड़ते हैं, बस एक बात, जिएंगे भी तो सही, शरीर थोड़ा ही छोड़ेंगे, शरीर तो एक बार छोड़ेंगे, 150 साल जिएंगे। आत्माभिमानी स्थिति अर्थात आत्मा के सातों गुण जीवन में, इसमें कोई प्रैक्टिस फिर नहीं रह जाती। देवताओं को कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, ज्ञान का स्वरूप है जीवन, प्रेम भरपूर है, संपूर्ण सुख आनंद खुशी शक्तियां पवित्रता सातों गुण जीवन में है। हमें इन सातों गुणों पे चिंतन करना है और एक एक गुण को स्वीकार करना है। देखो, आत्मा का स्वधर्म हम क्या बताते हैं? शांति। हम ये कहते हैं, अब अपने से बात करेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये नहीं कहते कि मुझे शांत स्वरूप बनना है। अंतर फील करें आप, अब इसे स्वीकार कर लें, अपनी बुद्धि को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अंतर्मन को स्वीकार करा दें, शांति मेरा स्वभाव है। जो स्वभाव होता है वो नेचुरली काम करता है ना, शांति मेरा स्वभाव है। अपने से बात करें, मेरी शांति को किसी के शब्द नष्ट नहीं कर सकते। कोई वातावरण मेरी शांति को अशांति में नहीं बदल सकता। परिस्थिति और समस्याएं मुझे अशांत नहीं कर सकती। संकल्प देंगे आप इन अपने को, इन संकल्पों का बहुत बड़ा महत्व है, ये छोटी चीजें नहीं है। संकल्पों से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। संकल्प करें, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। जो कुछ ज्ञान कहता है वो मेरे जीवन में है। संकल्प करें, है, यद्यपि हम जानते हैं वो नहीं है, हमें लाना है, फिर भी हम स्वीकार करें, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर है। प्रेम, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। इसके विपरीत कौन सा स्वरूप नहीं हो? क्रोध, शांति के विरुद्ध क्रोध हो गया, प्रेम के विरुद्ध घृणा। तो इस पर भी ध्यान देंगे, मैं शांत स्वरूप हूँ तो क्रोध स्वरूप नहीं, मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो नफरत स्वरूप नहीं। मुझे सबको प्रेम ही बांटना है। आज बाबा कह रहे थे ना, बाबा बच्चों को बहुत प्यार करता है, जो है ही प्यार का सागर। हम तो प्यार के सागर नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्यार है सबके पास। कलयुग में आते आते प्यार का लेवल बहुत डाउन हो गया है, और वो प्यार का सागर। मैं सदा एक बात पे विचार करता हूँ जो मुझे बहुत सुख देती है, आप भी उसका सुख पाएंगे। क्या है वो? देखो, शिव बाबा ने ये संसार का 5000 साल का चक्र कितनी बार देखा है? अनगिनत में से थोड़ी गिनती कर लें, उस अनगिनत में से हम सोचें 1000 बार उसने देखा है। कैसा लगता है उसे फिर देखना? कैसा लगता है? आपने कोई पिक्चर 20 बार देख ली हो, जब 21वीं बार देखने जाएंगे तो कैसी स्थिति रहेगी? जैसे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं, कितनी बार तो देख लिए ही। बाबा को इंटरेस्ट की बात नहीं, बाबा के लिए दूसरा शब्द है। बाबा बार बार देखता है हमारा चढ़ना और गिरना, हमारा सुख और हमारा दुख, हमारे पुण्य कर्म और हमारी गलतियां। अब भी जो हम कुछ करते हैं वो भी वो देखता रहता है, अगर चाहे तो देखता है। सबका नहीं देखता, सबका देख के उसे अपना दिमाग खराब तो नहीं करता। लोग कहते हैं ना भगवान सब कुछ जानता है, मैं सोचा करता हूँ सब कुछ जो जानेगा सबको देखने लगे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। एक कुमार मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि मुझे ऐसी सिद्धि है कि जिसको भी देखता हूँ उसके अगले 3 दिन में क्या क्या होगा वो सब सामने आ जाता है। देखो आप कहेंगे कितनी अच्छी बात है ना अच्छे, लेकिन वो हो गया था इससे दुखी और मेरे पास आया कि मुझे इससे मुक्त करो, क्या करूं, ये मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान अगर सबका सब कुछ देखने लगे तो वो भी शायद कहेगा मैं भी बंद गया, परेशान हो गया, ये तो क्या कर रहे पता ही नहीं चलता, वो देखता ही नहीं। जिसका देखना चाहे और जब देखना चाहे तब वो देखेगा, बस संकल्प का स्विच ऑन करेगा और सामने। तो बाबा ने हजारों बार ये सब देखा है तो वो अब साक्षी रहता है, उसके लिए शब्द है साक्षी भाव। और यही बाबा हमें कहता है, वो देखता है और हमने हजारों बार किया है। कोई भी काम हम भी यदि 10-20 बार कर लें तो 21वीं बार करना कैसा लगता है? खेल किया तो है, बार बार आंख बंद करके भी करते रहेंगे। फीलिंग में लाएं आप इसकी, इस माया को हमने हजारों बार जीता है, जिसके बाद जो भी माया हो उसके लिए संकल्प करें, इस माया को मैंने हजारों बार जीता है, ये कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं इससे बहुत अधिक शक्तिशाली हूँ। क्या होगा इससे, क्या होगा इस सोचने से? उसको जीतने की शक्तियां एक्टिव हो जाएंगी। ये अपनी सोई हुई शक्तियों को एक्टिव करने का तरीका है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाएगा, बहुत एक्टिव हो जाएगा और उसमें जो शक्तियां भरी हुई हैं वो काम करने लगेगी। इसलिए जब कोई भी पुरुषार्थी ये कहता है कि मैं इस चीज को नहीं जीत पाता तो वो याद करें मैंने हजारों बार इसे जीता है, मैं विजय रतन हूँ, बस उसको जीतने की शक्ति काम करने लगेगी। ये आप करें भी और दूसरों को सिखाएं भी जो नए ब्राह्मण आ रहे हैं। बाबा ने पवित्रता का मार्ग सबको दिया, वो जानता था कि ये मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन उसने आते ही क्या याद दिलाया, तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, तुम 2500 साल तक पवित्र थे, तुमने इस माया को कल्प कल्प जीता था, तो वो शक्तियां जो हमारे अंदर थी, जो दब गई थी छुप गई थी वो काम करने लगी और हमने उसको जीत लिया। तो देही अभिमानी स्थिति माना आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप, अशरीरीपन का अभ्यास करते करते हम आत्माभिमानी होते जाएंगे। और बाबा की मूल्यों में अभी भी आया 3-4 दिन पहले, जब तक तुम देही अभिमानी न बने तब तक ज्ञान की धारणा होगी नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान की धारणा किस बुद्धि में होती है? पवित्र बुद्धि में। और आत्माभिमानी में हम, मैं आत्मा पवित्र हूँ, इसको अपनी फीलिंग में लाएं, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, ये संकल्प अपनी फीलिंग में लाएं, मैं हूँ। ये संकल्प छोड़ देने हैं कि मुझे होना है, मुझे बनना है, मैं हूँ। मैंने ये बात सुनी थी 82 में मुरली में आई, दो मुरली चली थी खुदा दोस्त पर, उसके आसपास की मुरलियों में ही है। तुम सोचते हो हमें पवित्र बनना है, थोड़ा पंखा चला देंगे भाई, थोड़ा एक पे, हमें पवित्र बनना है, ये सोचते हैं ना हम सब, हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। बाबा ने कहा लेकिन ये नहीं, ये सोचो मैं परम पवित्र आत्मा। पहली बार मुझे ये बात मिली, बहुत काम आई थी उन दिनों, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो एक बहुत अच्छी चीज याद रखेंगे, जैसा स्वरूप हम अपना बनाना चाहते हों, मान लो किसी को क्रोध आता है, किसी का मन टेंशन में ज्यादा रहता है, किसी को इम्प्योरिटी ज्यादा सताती है, किसी का योग नहीं लगता है, क्या करेंगे? बहुत सुंदर एक टेक्निक अपनाएंगे जीवन में, सवेरे उठते ही ये अभ्यास करने के साथ, बाबा को गुड मॉर्निंग किया, ये काम पहले 10 मिनट में कर लेने हैं, क्योंकि इस 10 मिनट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। तो ये जो आत्मा की बातें हैं, संकल्प कर दो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, 5 बार कर दें, पवित्रता की शक्ति बढ़ने लगेगी। मैं क्रोध मुक्त हूँ, क्रोध समाप्त होने लगेगा, 5-5 बार अवश्य करेंगे। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, हम अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं क्या करें, उसका भी एक उत्तर यही होता है, सवेरे उठते ही 5 बार सच्चे दिल से संकल्प कर लें मैं बुद्धिमान हूँ। ठीक है, टेंशन बहुत रहता है बिना मतलब का भी, मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, मैं तनाव मुक्त हूँ। ये संकल्प सवेरे उठ के करेंगे तो आत्मा के बारे में आत्मविमानी स्थिति, मैं हूँ, मुझे बनना है नहीं, ये शब्द हैं बाबा के। बाबा ने एक बार ये 3 चीजें कही मुरली में, तब मुझे इसका पता नहीं था इसका मतलब क्या है, कहा सवेरे उठते ही ये 3 बात याद किया करो। उसमें था मैं भाग्यवान हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। तब तो मैंने ये सोचा था सोचने से क्या होगा, लेकिन पीछे ये बात समझ में आ गई कि उठते ही हमारा अंतर मन जागृत रहता है, जो संकल्प हम सच्चे मन से करेंगे वही हमारा जीवन बन जाएगा। तो मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, अपवित्रता मेरे पास है ही नहीं, आत्मविमानी बनने के लिए ये चिंतन करेंगे। मैं काम से भी मुक्त हूँ, क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब से मुक्त हूँ। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो उसमें अहंकार हो तो कहा जाएगा ये आत्मविमानी है? नहीं, अपने अहंकार को अपने चित्त को निर्मल करने के लिए 2 चीजें हैं हमारे पास बहुत सुंदर, जो हमें इस रूहानी मार्ग पर अपने जीवन में लानी है, निर्मलता और दिव्यता। मन निर्मल, बुद्धि दिव्य, और ये कैसे होगा? एक ही संकल्प आपके सामने इसके लिए, बाबा का संकल्प, बाबा का बताया हुआ, पर इसको अपनी गहरी प्रैक्टिस में लाना है। जो कुछ मेरे पास है वो सभी परमात्म देन है। बाबा का है इससे भी अच्छा शब्द, वो बाबा ने दिया है, वो ईश्वरीय देन है। ये बहुत अच्छी फीलिंग में ले आए। चाहे हमारे पास अच्छी बुद्धि है, धन बहुत है, पद पोजीशन बड़ा है, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारा नाम बहुत है, या हम में कोई और योग्यता है, कहां से आई? बाबा ने दी। किसी को सेवाओं की सफलता का वरदान है, वो अगर कहें मैं सेवा करता हूं तो क्या होगा? धीरे धीरे वरदान नष्ट हो जाएगा और उसकी सेवाओं की सफलता उसे सुखों की गहरी फीलिंग नहीं होने देगी। लेकिन जब हम किसी भी प्राप्ति के लिए ये गुड फीलिंग रखते हैं, ये प्रभु देन है, तो वो हर चीज हमें सुख देती है। ये सदा याद रखना है, चाहे धन है, ये प्रभु देन है, तो धन सुख देगा बहुत, और मैंने कमाया तो कष्ट देगा धन। देखो मैं आजकल एक चीज देखता जा रहा हूं, किसी को ये बात कड़वी भी लगती है, लेकिन ये रहस्य है इस सृष्टि का, तो सबको जानना ही चाहिए। आज बहुतों के बच्चे अपने माँ बाप को सुख नहीं दे रहे हैं, और युवा वर्ग सब नहीं, कम से कम 50% युवक गलत राहों पे जाने लगे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं भी कोटा में था एक हफ्ता पहले, कोटा राजस्थान में, ऑल इंडिया का वहां सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है, जहां इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईआईटी ये सब के कोचिंग के लिए 1,00,000 स्टूडेंट रहते हैं हमेशा वहां। उनके हॉस्टल्स भी बने हुए और लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट भी खोले हुए उनको कोचिंग देने के लिए। आईएएस से लेकर सबकी कोचिंग का वहां है। तो वहां बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स में सुसाइड करने की टेंडेंसी, जीवघात, ये बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी बुराइयां उनमें आती जा रही हैं। तो इसका एक कारण बन रहा है पाप के धन से बच्चों की पालना हुई है। चाहे किसी को ये बात अच्छी लगे या न लगे, पर ये सत्य सबको जानना चाहिए। जिस जैसे धन से बच्चों की पालना हुई है, उसका इफेक्ट बच्चों पर होगा ही। तो हम सभी आत्मभिमानी बनने के लिए इन सातों गुणों को स्वीकार कराएं। मैं ये हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, अर्थात मैं संपूर्ण सुखी हूं, दुखी नहीं, मेरे सुख को कोई भी मनुष्य छीन नहीं सकता, कोई परिस्थिति, किसी के शब्द मुझे दुखी नहीं कर सकते, मैं संपूर्ण सुखी हूं। बहुत डीप साइलेंस में बैठकर अपने को आत्मा देखकर सातों गुणों का चिंतन करना जरूरी है। पॉजिटिव नेगेटिव, समझिए ना, मैं शांत स्वरूप हूं, क्रोध नहीं, क्रोध मेरी नेचर है ही नहीं। बार बार जब कहेंगे क्रोध मेरी नेचर नहीं है तो हटती जाएगी। याद हो आपको बाबा ने कई बार समझाया है, किसी भी संस्कार को जब तुम ये कहते हो ये मेरा संस्कार है तो वो मेरा ही रहता है, बैठ जाता है वो घर में। ये मुझे मेरा कह रहे हैं, यही मेरा उचित स्थान है। आप संकल्प कर दो ये मेरा है ही नहीं, पूरा बोलना मेरा संस्कार है ही नहीं, किसी को दुख देना मेरा संस्कार है ही नहीं, मैं तो सुख स्वरूप हूं, चिंतन में लाएंगे तो ये चिंतन हमारे सुंदर जीवन का निर्माण करेगा। इस आत्मविमानी स्थिति को परफेक्ट करने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास सबसे सुंदर अभ्यास है। हमें योग के साथ ये जानना चाहिए। देखिए, अलग अलग प्रैक्टिस के अलग अलग फायदे हैं। ऐसा दीदी होने से मोह नष्ट होगा, हम इस देह में रह के बहुत सुखी फील करेंगे, गहरी शांति का अनुभव होगा, जो हमने चर्चाएं की, सबके प्यारे बन जाएंगे। बाबा की पावरफुल याद से हमारे विकर्म नष्ट होंगे, हम में शक्तियां आएंगी। विकर्म रह गए तो समस्याएं बहुत आएंगी जीवन में, क्योंकि अनेक समस्याओं का कारण मनुष्य के विकर्म है। पांच स्वरूपों के अभ्यास से क्या फायदा होगा, जानते हैं ना सब पांच स्वरूपों का। पहला मैं अनादि, दूसरा आदि, तीसरा पूज्य, चौथा और फरिश्ता। क्या होगा इनके अभ्यास करने से? अभ्यास का अर्थ चिंतन, मैं फरिश्ता हूं। दूसरा विजुअलाइजेशन, अपने फरिश्ते स्वरूप को देखना। और तीसरा, तीनों अभ्यास करेंगे, स्वीकार करना, मैं हूं, यह है मेरा असली स्वरूप, अपना देव स्वरूप। चिंतन करना, हम सत्ययुग में पहले जन्म में पहुंचे, अपने पहले स्वरूप को देखना और सच्चे दिल से स्वीकार करना, ये है मेरा स्वरूप, ये मैं हूं, ये मैं था, ये मैं थी। तो इससे क्या होगा, जिस स्वरूप की हम प्रैक्टिस करेंगे, उस स्वरूप के गुण लक्षण हमारे जीवन में आते जाएंगे। इसलिए पांच स्वरूपों की प्रैक्टिस सबसे सुंदर प्रैक्टिस है। योग से बल आएगा, जो कुछ हम नहीं करना चाहते उसे नहीं करने का बल, जो करना चाहते हैं उसे करने की ताकत योग से आएगी। योग हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, लेकिन हमें आत्मा के संस्कारों को भी दिव्य करना है, प्योरिटी को भी परफेक्ट करना है, योग से भी वो बहुत बढ़ेगी। लेकिन पांच स्वरूपों का अभ्यास हमारी एकाग्रता को भी बहुत बढ़ाएगा। योग में बहुत सुख लेना है तो पांच स्वरूपों का अभ्यास बढ़ाएं। अब हम आत्मविमानी की प्रैक्टिस करेंगे, सातों गुणों को स्वीकार, अपने अंतर मन में भरेंगे, मैं ये हूं। चले आत्मा पर स्थिर करें अपनी बुद्धि को, आत्मा ही दिखाई दे, चमकती हुई मणि। पॉइंट ऑफ एनर्जी, मैं इस देह की मालिक हूं, ये देह मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे अंदर ज्ञान का संपूर्ण प्रकाश है, मेरे चित्त का अंधकार दूर हो गया है, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, ईश्वरीय प्रेम से भरपूर हूं, मेरे पास प्रेम का अथाह भंडार है, मैं सारे संसार को प्रेम बांटने में समर्थ हूं, घृणा नफरत से, ईर्ष्या द्वेष से मेरा कोई नाता नहीं, मैं आत्मा शांत हूँ। अपने अंदर छुपी हुई गहन शांति को महसूस करें। शांत। ये शांति तो मेरी नेचर है। संसार की कोई भी बात मुझसे मेरी शांति को छीन नहीं सकती। क्रोध से मेरा कोई नाता नहीं। मैं शांत हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। बहुत सुखी हूँ। मेरे दुखों के दिन पूरे हुए। अब मुझे सारे संसार को सुख बांटना है। मैं मास्टर सुखदाता हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। माया जीत हूँ। संपूर्ण पवित्रता का प्रकाश मेरे पास है। पवित्रता का तेज मुझ में समाया है। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। मुझ में शक्ति है हर समस्या को नष्ट करने की। मुझ में शक्ति है विजयी बनने की। मैं आनंद स्वरूप हूँ। भगवान को पाकर मैं आत्मा बहुत आनंदित हूँ। बाबा मेरे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मैं आत्मा अपने इन सातों गुणों के तेज से तेजस्वी हूँ। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ। मेरा प्रकाश सारे संसार को प्रकाशित करता है। मैं पुण्य आत्मा हूँ। पवित्र हूँ। शांत। हूं। ओम शांति। ये चिंतन है, योग में आप इसको शुरू से करें तो बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, योग का रस मिलेगा और ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी। क्योंकि जिस चीज को हम तब स्वीकार करते हैं जब हमारा मन शांत हो, ध्यान से सुन लेंगे ये बात, जिस भी चीज को हम तब स्वीकार करते हैं जब हमारा मन शांत हो, तो वो चीज हमारे जीवन में उतर जाती है। किसी ने सवेरे उठते ही सोच लिया हो मेरा तो क्रोध जाता ही नहीं, तो क्या हो गया, बैठा दिया, लगता है ये समस्याएं तो मेरे जीवन से जाएंगी नहीं, गलत संकल्प कर दिया। अपने संकल्पों पे बहुत ध्यान देंगे तो ये जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा दूसरों के लिए। देखिए, सेवाओं की बात मेरे से बहुत लोग पूछते हैं। पीछे मुरली में आया था, आपने सुना हो, प्योरिटी ही सबसे बड़ी पब्लिसिटी है। बाबा हमेशा कहते हैं चेहरे और चलन से सेवा करो। क्यों ये सब बात इम्पोर्टेंट है, क्यों प्योरिटी से सबसे बड़ी पब्लिसिटी होगी, देवकुल की आत्माओं को तो यहाँ आना ही है ना, अनेक देवकुल की आत्माएं इंतजार कर रही हैं, उनकी सोई हुई पवित्रता देवत्व अब जागृत होने लगा है। जैसे दिन जब सवेरा होने को होता है, सूरज उगने को होता है, आसमान में लालिमा छा जाती है, सबको उठने की इच्छा होती है ना, देवयुग देवकुल की आत्माएं अब बाबा के पास आना चाहती हैं। हमारी प्योरिटी, हमारा खुशी का चेहरा, हमारा चमकता हुआ चेहरा उन्हें आकर्षित करेगा, हमारे वाइब्रेशन उन्हें खींचेंगे, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए हमारा अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना बाबा के कार्य में सबसे बड़ी मदद करना है। विदेही स्थिति, विदेही अवस्था है, अवस्था आत्मविमानी सातों गुणों का स्वरूप वाली स्थिति है। और जब हम कर्म में रहते हैं, कर्म करते हुए डिटैच रहना, कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से मुक्त रहना, कर्म करते हुए ऐसी स्थिति में आ जाना मानो हमने कुछ किया ही नहीं, निर्लिप्त स्थिति, कर्म करते हुए चारों ओर के वातावरण से के प्रभाव से मुक्त रहना, कर्म करते हुए साथियों पर हमारा प्रभाव पड़े, साथियों का प्रभाव हम पर न पड़े, यह है विदेही अवस्था। इसके लिए कौन सा राजा प्रसिद्ध है, जनक, कि उसके पास राज्य था, उसके पास महल था सुंदर, दरबार था बहुत सुंदर, सब सुखों के साधन थे, लेकिन वो कैसे रहता था, सन्यासी की तरह डिटैच। एक बहुत अच्छी कहानी उसके लिए बताते हैं, लोगों ने कहानी बनाई हुई है, कि एक सन्यासी को ख्याल आया कि मैं जंगल में रहता हूं, मैं तो विदेही हुआ नहीं, ये राजा जनक राज करता हुआ कैसे विदेही होगा। तो वो पहुंच गया दरबार में और उसकी इच्छा का पता लग गया राजा को कि ये इसलिए आया है सन्यासी का, आपको पता लग जाएगा, ठहरो रहो हमारे महल में कुछ दिन। उसको रख दिया। एक दिन नदी पर उसको नहलाने के लिए ले गया राजा कि चलो आज सैर भी करके आते हैं और स्नान करते आते हैं। पीछे एक प्लान था, प्लान क्या था, जब दोनों नहा रहे थे तो एक सैनिक दौड़ा दौड़ा आया, राजन महल में आग लग गई है। ये सुनते ही राजा जनक तो शांत स्थिर रहा, लेकिन सन्यासी निकलकर भागने लगा। जनक ने उससे पूछा, भाई तुम कहाँ जाते हो? कहा, मेरी पोटली जल जाएगी। बस कहा कि ठहर जाओ, तुम्हारी पोटली सुरक्षित है। तो उसको दिखाया कि तुम्हें अपनी छोटी सी पोटली से भी मोह है, उसमें जरा सा कोई रखा होगा, थैली रखते ना सन्यासी, उसमें जरा सा रखा, तुम्हारा उससे भी मोह है कि वो जल जाएगी, और मेरे महल में आग लग गई, मैं तो भागा ही नहीं। तो कहा, मैं महल में रहता हूं, महल मुझ में नहीं रहता। तो हम कर्म करें, लेकिन कर्म हमारे मन पे छा न जाएं, कर्म करते हुए हम पूरे डिटैच रहें, अनासक्त रहें, वस्तुओं का उपयोग करते हुए हम अनासक्त रहें। हमारे पास एक बहुत सुंदर कार है, हम उसको यूज करते हैं, लेकिन ये कार मेरी है, उसमें ममत्व हो जाए, ये विदेही स्थिति नहीं। ये कार आज है, कल नहीं होगी, हो सकता है कल दूसरी आ जाए। आज हम बहुत अच्छा भोजन खा रहे हैं, कल हमको सीधा सादा खाना पड़े, सूखी रोटी खानी पड़े। डिटैच, यह है विदेही अवस्था। तो जो कुछ हमारे पास है उसको बाबा को अर्पित करके यूज करना, उसमें ये दृष्टि रखना कि ये सब विनाशी हैं, ये हमारे साथ नहीं रहेंगी सदा, इन्हें छोड़कर तो हमें चलना ही है। ये स्थिति विदेही स्थिति है, निर्मोही, अनासक्त, ममत्व से मुक्त, समर्पण भाव से जीना, ये विदेही स्थिति है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि संसार में मेरा मेरा बहुत है। हर मनुष्य के पास, हमारे पास जो पेन है वो भी, उसमें भी हमारा ममत्व है, चाहे वो 5 रुपए का ही है, मेरा है। और अगर वो खो जाए तो 5-7 संकल्प तो चले ही जाएंगे, चलेंगे या नहीं? हमें ये नहीं कि हमें खो देना है और डिटैच रहना है, पर मैं और मेरा, ये आत्मा को अलौकिक फीलिंग में नहीं रहने देते। इसलिए शरीरी होते होते, आत्माभिमानी होते होते, हमारा मन ईश्वरीय रस में इतना रम जाता है कि भोजन का स्वाद, भोजन की, बहुत अच्छे भोजन की इच्छा, कर्मेंद्रियों के रस, वस्तुओं के प्रति लगाव, ये सब आप ही ढीले पड़ने लगते हैं। उसमें मुख्य बात है, जैसे जैसे आत्मा देह से न्यारी होने लगती है, ढीली, ढीले हो गए ना, वस्त्र है ये ढीला हो गया, वैसे वैसे हमारी विदेही अवस्था बनती जाती है। तो ये हमें प्रैक्टिस रखनी है, ये हमारी विदेही अवस्था है, पर बीज है अशरीरीपन। साथ साथ अपने स्वमान को भी बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी आत्मा का ही स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? और अंत तक हम जानते जाएंगे मैं कौन सी आत्मा हूँ। एक बहुत अच्छी चीज आपको सुनानी है, चिंतन के लिए केवल। कोई आत्मा बाबा से रूह ध्यान कर रही थी, बहुत अच्छी, कल मुझे सुनाया कि मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप हजारों लाखों करोड़ों भक्तों की आवाज कैसे सुन लेते हो एक साथ? तो उसको बाबा से आवाज आने लगी, क्योंकि मुझे कान नहीं है। मैंने इससे बहुत अच्छी चीज सीखी कि जैसे जैसे हम निराकार स्थिति में आते जाएंगे, हमें भी भक्तों की आवाज सुनाई देने लगेगी। बहुत अच्छी बात है ये। बाबा कहता है ना, भक्तों की आवाज सुनो, पर सुनती नहीं, मुझे भी नहीं सुनती। मैं सोचता हूँ ये बात मेरे से भी मिस है, सुनती नहीं। पता तो है भक्त दुखी है और कुछ कुछ मांग रहे, लेकिन आवाज आने लगे बुद्धि में, पुकार हो रही है, बुहाने लगे, ये होता नहीं। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात मुझे मिली, जितने जितने हम देह से न्यारे होते जाएंगे, बाबा की तरह कान नहीं यानी कर्मेंद्रियों का रस नहीं, कर्मेंद्रियों से डिटैच, उतना ही सबकी पुकार हमें सुनाई देती रहेगी। तो बहुत अच्छी सबको ये साधना करनी है, इससे हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे और वो समय आएगा जब हम संकल्प करेंगे और वही हमारा स्वरूप बन जाएगा। हम संकल्प करेंगे मैं आत्मा बहुत चमक रही हूँ, यहाँ तेजस्वी हूँ, तो देखने वालों को हम तेजस्वी रूप में आत्मा रूप में दिखेंगे, देह भूल जाएगा। आपने बहुत अभ्यास कर लिया मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ, बस संकल्प करेंगे मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ, वही स्वरूप सामने वालों को दिखने लगेगा। तो हम अपने भिन्न भिन्न स्मृतियों को बढ़ाते चलें। स्वमान के साथ आती है फिर स्मृतियां, जो मैंने एक उदाहरण दिया, हजारों बार हमने चक्र में पार्ट प्ले किया है ना, हमें उसकी स्मृति आ जाए, देवता हजारों बार लाखों बार हम बने हैं, तो देवत्व उभरने लगेगा। ओम शांति। चलो फिर से आत्मा ही दिखाई दे, मैं कुछ संकल्प दूंगा आपको, बाबा को याद तो करते ही हैं, पर केवल शरीरीपन का अभ्यास करेंगे, बहुत सुंदर। एक सेकंड में सभी महसूस करें, मेरे देह के पांचों तत्व प्रकृति के तत्वों में विलीन हो गए, बच गई मैं निराकार आत्मा। अब मैं आत्मा उड़कर चलती हूँ ऊपर की ओर, जाते हुए देखें आत्मा को, उड़कर जा रही हूँ ऊपर परम धाम की ओर, आकाश को पार करते हुए, सूक्ष्म लोक को पार करते हुए पहुंच गई परम धाम। ये शांति धाम है मेरा घर, यहाँ मुझे संपूर्ण चैन और विश्राम है। शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी, अनुभव करें शांति धाम की शांति का। यहाँ से अब मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे उतरती हूँ, आ जाती हूँ देवलोक में, अपने पहले जन्म में। अपने को देव स्वरूप में देखें, चारों स्वर्ग, सोने के चमकते महल, प्रकृति का सौंदर्य, मैं अपने देव स्वरूप में। यहाँ से वापिस अपनी देह में। भ्रकुटी सिंहासन पर स्वराज्याधिकारी राजा मन बुद्धि का मालिक अपने मन को आदेश दें, हे मेरे मन शांत हो जाओ। हे मेरी बुद्धि स्थिर हो जाओ। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।